हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। फिलहाल झलक के चेहरे पर एक आत्मविश्वास साफ दिखाई दे रहा था। उसने अभी भी आदित्य का हाथ थाम रखा हुआ था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी और चमक थी। सबसे बड़ी खुशी की चमक ये थी कि उसने अपने दादाजी का ड्रीम प्रोजेक्ट पूरा किया और उसे सीक्रेटली सब लोगों को दिखा भी दिया। उसके प्रोजेक्ट के बाद बिजनेस वर्ल्ड और समाज में उसका एक अलग ही नाम और पहचान बन चुकी थी। झलक के चेहरे पर खुशी के साथ साथ बहुत भावनाएं भी दिखाई दे रही थीं और कहीं ना कहीं उसे लगने लगा था कि इस बार बिजनेसमैन ऑफ द ईयर का अवार्ड उसे ज़रूर मिल सकता है, और अब वो उस अवार्ड फंक्शन में जाने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। फिलहाल वहीं दूसरी ओर अब सिद्धार्थ खुराना ने भी अपने कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स इसी वीकेंड में लॉन्च कर दिए थे, ताकि बिजनेस संस्था और अवार्ड ऑर्गेनाइज करने वाली संस्था सिद्धार्थ खुराना के बारे में अच्छी तरह से जान सके और समझ सके। आखिरकार हर साल वो आगे निकल आता था। फिलहाल अब सभी मेहमानों को विदा करने के बाद आदित्य ने गहरी नज़रों से झलक को देखकर कहा था, ऑलरेडी आपका ये ड्रीम भी पूरा होने वाला है, आपका सपना भी पूरा होने वाला है, और उसके बाद मुझे पूरी पूरी उम्मीद है कि अब आप नए रास्ते की ओर जाएंगी। आप अपने दुश्मनों को भी अब मुंह तोड़ जवाब देंगी। बस कुछ ही दिन बाकी हैं, क्या उसके बाद आप मेरी ज़िंदगी में आएंगी? आज उसने बेहद गहरी नज़रों से झलक को देखते हुए ये कहा। झलक ने गहरे अंदाज में कहा, मिस्टर राणा, मैं आपको पहले ही सारी बातें क्लियर कर चुकी हूँ, और मुझे नहीं लगता कि आपको इन सारी बातों को बार बार रिपीट करके मेरे सामने बोलना चाहिए। झलक ने तेज आवाज में जैसे ही ये कहा, आदित्य का दिल मुरझासा गया था, लेकिन वो चाहकर भी झलक से कुछ और नहीं कह सकता था। उसने सब्र करना सीख लिया था। वो जानती थी कि वो किसी को भी झूठी कमिटमेंट नहीं दे सकती, क्योंकि जिन लोगों से वो टकराने जा रही थी वे लोग कितने ज्यादा नीच और गिरे हुए हैं ये बात झलक से छुपी नहीं थी, और झलक किसी को भी अब झूठी उम्मीद नहीं देना चाहती थी, क्योंकि वो जानती थी कि इस टकराव में उसकी जान को भी खतरा हो सकता था। इसीलिए झलक पूरी तैयारी के साथ उन लोगों से लड़ना चाहती थी। वहीं दूसरी ओर झलक ने अपने प्रोजेक्ट की सक्सेस की पूरी कहानी अपने दादाजी को अच्छी तरह से बता दी। दादाजी की आज आंखें नम हो गई थी। इस वक्त वो घर पर ही मौजूद थे। सौरभ जी और आरव जी उन्हें संभालने की पूरी कोशिश कर रहे थे। तभी दादाजी भावुक होकर बोले, हमने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि जो प्रोजेक्ट का सपना हमने कई सालों पहले देखा था वो हमारी पोती इस तरह कुछ ही महीनों के अंदर पूरा कर देगी। तुम लोग सोच भी नहीं सकते मुझे कैसा महसूस हो रहा है। बेटा, मैं यही कहता था कि अगर मेरा बेटा मेरे साथ होता तो मैं उससे इस प्रोजेक्ट पर काम करवाता, लेकिन तेरी बेटी ने करके दिखा दिया। सचमुच बेटा, सचमुच तुम सोच भी नहीं सकती कि मैं आज कितना ज्यादा खुश हूँ। मेरी खुशी का कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। कहीं ना कहीं इस वक्त वो पूरी तरह से भावुक हो गए थे। वहीं अनामिका तुरंत उनके पास आई और बोली, ये क्या दादाजी, अभी दादू ऐसे रोएंगे तो कैसे काम चलेगा? आपने भी मुझे एक बार अपने इस प्रोजेक्ट के बारे में जिक्र किया था, लेकिन मैंने आपको साफ मना कर दिया था, क्योंकि उस वक्त मेरे लिए अगर कोई प्रायोरिटी थी तो मेरे पापा को ढूंढना मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट था, और उस बीच में किसी और चीज़ को अपने बीच में नहीं आने देना चाहती थी, इसीलिए मैंने उस प्रोजेक्ट के बारे में बात करने से मना कर दिया था। लेकिन देखा आपने, जिस काम को दिल से किया जाए वो ज़रूर पूरा होता है। झलक ने देखे किस तरीके से ये पूरा काम कर दिया। सचमुच मुझे अपनी बहन पर गर्व है। अनामिका के मुँह से ऐसी बातें सुनकर तुरंत दिग्विजय जी उठे और अपनी पोती का हाथ थाम कर बोले, मेरी बच्ची, तूने तो हमारी ज़िंदगी लौटा दी है। वो तो फिर भी एक सपना था, लेकिन तुमने तो हमें जीने की वजह दे दी है। हमें हमारा बेटा लौटाया है, हमारी झलक हमें वापस मिल गई है। तुम नहीं जानती मेरी बच्ची, तुमसे ही तो हमारा परिवार है। तुम लोग ही नहीं होते तो कैसा प्रोजेक्ट और कैसा सपना। ये बोलकर दादाजी एक बार फिर से भावुक हो गए। वहीं अनामिका तुरंत आगे बढ़ी और बोली, क्या दादाजी, इस तरह से आप रोते हुए बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। प्लीज़ प्लीज़ इस तरह से रोना बंद कीजिए, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। अब अनामिका ने जैसे ही ये कहा, दादाजी रोते रोते भी हल्का मुस्कुरा दिए और बोले, क्यों, क्या हुआ? तुम तो कहती हो कि मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूँ, अब अपने बेस्ट फ्रेंड को इस तरह रोने से कैसे रोकोगी? क्या तुम्हें नहीं पता? तब अनामिका जल्दी से मुस्कुराते हुए बोली, जानती हूँ कि आपको क्या चाहिए, लेकर आती हूँ अभी, लेकिन जब तक मैं वापस आऊँ आप रोना बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ये सुनकर कहीं ना कहीं सब मुस्कुरा दिए। वहीं स्नेहा जी अपने बेटे रोहन को देखते हुए बोली, देखा, तुम्हारी दीदी ने कितनी बड़ी सफलता हासिल की है, तुम्हें भी आगे चलकर ऐसा ही कामयाब बनना है। रोहन मासूमियत से बोला था, मुझे कामयाब होने की क्या ज़रूरत है, जब मेरी दीदी कामयाब है वही मेरे लिए काफ़ी है। ये सुनकर स्नेहा जी मुस्कुरा दी और उसके सिर पर हल्की सी चपत लगा दी। फिलहाल वहीं आरव लगातार गहरी नज़रों से सामने की ओर देख रहे थे और उन्हें एक अजीब सा डर सता रहा था। आखिरकार वो बोल ही पड़े, लेकिन पिताजी, झलक ने जो काम कहा था वो तो मैंने कर दिया है, लेकिन अब जैसे जैसे उसका वक्त नज़दीक आता जा रहा है मुझे अजीब सी बेचैनी हो रही है, अजीब सा डर लग रहा है पिताजी। कुछ समझ नहीं आ रहा कि मेरी बेटी उन लोगों का सामना कैसे करेगी, और अगर मेरी बेटी का साथ जानने के बाद उन लोगों ने उस पर हमला कर दिया तो? आप तो सिद्धार्थ खुराना को अच्छी तरह से जानते हैं, वो कोई आम आदमी नहीं है, वो एक नंबर का दरिंदा है। दरिंदा,
क्योंकि मैंने उसके बारे में थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन करवाई है। मुझे साफ साफ पता चला है कि वो लोगों को नॉर्मल मौत तो देता ही नहीं, बल्कि उसे परेशान करने वालों को बड़ी ही खतरनाक मौत देता है। अपनी बेटी की सुरक्षा को लेकर मैं बहुत परेशान हूँ पिताजी। उनकी बातें सुनकर कहीं ना कहीं दिग्विजय जी भी सोच में पड़ गए थे, लेकिन उन्होंने खुद को संभालते हुए कहा, मुझे तेरे से ज्यादा पता है बेटा कि तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। हम ये भी जानते हैं कि तुम्हें क्या लगता है, क्या हम पागल हैं, बेवकूफ हैं, या हमें नहीं पता कि हमारी बेटी का मुकाबला जिन दुश्मनों से है वे असल में कैसे हैं। हमें अच्छी तरह से पता है, दुश्मनों की रग रग से हम वाकिफ हैं, इसीलिए हमने सबसे पहले अपनी बेटी को मजबूत बनाया है। और तुम देखना, इस प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद जो उम्मीद नजर आने लगी है, ऐसा लगने लगा है कि इस बार सफलता न केवल हमारी बेटी के कदम चूमेगी बल्कि उसके दुश्मन भी मुंह की खाएंगे। वहीं दूसरी ओर ऑफिस में इस वक्त नैना गुस्से से अपना चेहरा सामने बैठे इंसान की ओर घूर रही थी। देखिए मिसेस, सामने बैठे आदमी ने कहा, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, आपने ही मुझ पर शक किया है। आपकी सौतेली बेटी को भला मैं मोहरा बनाकर क्यों इस्तेमाल करूंगा। इस वक्त उसके सामने कोई और नहीं बल्कि मनोज चौधरी बैठे हुए थे, जो विपक्षी पार्टी के वर्कर थे और जिन्होंने हमेशा नैना के खिलाफ जहर उगला था। उन्होंने मीडिया में कई बार ये तक कह दिया था कि अगर उसने बेटी को जन्म दिया था तो उसे फेंक क्यों दिया था। ऐसी ऐसी बातें उन्होंने खुलेआम कही थी, लेकिन जब से नैना ने झलक को बिंदास तरीके से आगे बढ़ते देखा था, उसे लगने लगा था कि जरूर उसके पीछे कोई बड़ा हाथ है और शक की सुई कहीं ना कहीं मनोज की तरफ जा रही थी। उसे लगा था कि शायद मनोज ने अपने वर्कर के जरिए उसे परेशान करवाने की कोशिश की हो, झलक के साथ मिलकर।
इस वक्त मनोज जी थोड़ा घबराए हुए बैठे थे और बोले, मिसेज, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने आपकी सौतेली बेटी का कोई इस्तेमाल नहीं किया, और वैसे भी मुझे उसका इस्तेमाल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे पास पहले से ही काफ़ी मुद्दे हैं और मैं वैसे भी गैर तरीके से लड़ने में विश्वास नहीं रखता, किसी को धोखा देने में या पीठ पर वार करने में नहीं। जैसे ही मनोज की बातें खत्म हुई, नैना हल्का सा मुस्कुराई, उसके चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान थी। जानते हो राजनीति कैसी गंदी गलती होती है, नैना ने धीमी लेकिन खतरनाक आवाज में कहा, और उसकी गंदगी में आकर इंसान का नाश किस कदर होता है। याद रखना मनोज जी, इस बार तो मैं आपको जिंदा और सलामत जाने दे रही हूँ, लेकिन अगर झलक के पीछे आपका हाथ निकला तो मैं आपको बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। ये कहकर उसने मनोज जी को उस पल के लिए जाने दिया। मनोज ने बाहर निकलते ही राहत की सांस ली। वहीं उसका ईशान गुस्से से उसे देखते हुए बोला, नैना, ये क्या किया तुमने? तुमने उसकी आंखों में नहीं देखा कितना शातिर था वो? मुझे तो लगता है कि वो इंसान एक नंबर का झूठा है, वो ज़रूर कुछ छुपा रहा है। तुम्हें कम से कम सही तरीके से इन्वेस्टिगेशन तो करनी चाहिए थी, थोड़ा सा उसे डराना धमकाना चाहिए था, इतनी आसानी से जाने दिया। अगर बाहर जाकर उसने हमारे खिलाफ मुँह खोल दिया तो? तभी नैना ने अपने चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान सजाई और बोली, मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि मैंने क्या किया है, और रही बात उस इंसान के बाहर जाकर मुंह खोलने की, तो वो किसी भी कीमत पर मुंह नहीं खोलेगा। अब उस आदमी को हैरानी हो रही थी कि नैना इतनी ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ कैसे बोल रही है, लेकिन फिलहाल वो उस वक्त के लिए खामोश हो गया। वैसे भी अपनी बीवी के सामने उसकी जबान कम ही चला करती थी। वहीं आकांक्षा अब गुस्से से अपने नाखून चबाते हुए अपनी माँ के पास आई और बोली, अगर ये विपक्षी पार्टी भी झलक के पीछे नहीं है तो फिर कौन है? क्या है आदित्य राणा, और आप जानती हैं उसके बारे में? मैंने थोड़ी बहुत इन्वेस्टिगेशन करवाई है। आगे की स्टोरी के लिए बने रहिए दोस्तों, और सुनते रहिए पॉकेट FM।